एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जहां जानवर बातें करते हैं, नावों में घूमते हैं और मतलब दोस्ती की मिसाल कायम करते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं केनेथ ग्रेहम के अमर उपन्यास द विंड इन द विलोज की, जिसे हिंदी में पवन में सरसराहट का अनुभव कह सकते हैं शायद। 1908 में आई ये किताब बच्चों के कमरे से निकलकर जैसे हर उम्र के पाठकों के दिल में बस गई है, और इसके लेखक केनेथ ग्रेहम वो भी खुद किसी उपन्यास के पात्र से कम नहीं थे।
सही बात है।
सोचिए, एक तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड के वो संजीदा सचिव, रोजमर्रा के लेन देन और नियमों की दुनिया।
हाँ, बिल्कुल। उनके अपने जीवन में भी तो वो बचपन का सूनापन था, माँ गुजर गई, पिता ने भी साथ छोड़ दिया।
हाँ, शायद इसीलिए उनके लेखन में वो सुरक्षा, घर और प्रकृति की शांत गोद की तलाश इतनी इतनी शिद्दत से महसूस होती है।
ऑक्सफोर्ड जाने का सपना भी अधूरा रहा, बैंक की नौकरी मिली पर कलम चलती रही।
और ये किताब, ये तो उनके अपने बेटे एलिस्टेयर, जिसे वो प्यार से माउस कहते थे, उसके लिए बुनी गई कहानियों का एक गुलदस्ता है।
हाँ, बेटा जो देख नहीं सकता था, जिसे दुनिया शायद थोड़ी ज्यादा चुभती थी, उसके लिए पिता ने शब्दों से एक महफूज दिलचस्प दुनिया बनाई।
और कमाल की बात है कि शुरू में इसे आलोचकों ने अजीब समझा, है ना?
हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी प्रकाशक ने तो छापने से ही मना कर दिया था।
लेकिन फिर पाठकों ने, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट जैसे लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया।
सही।
ये एडवर्डियन इंग्लैंड, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत का ब्रिटेन, जब पुरानी दुनिया बदल रही थी, मोटर गाड़ियां आ रही थीं, उसका एक सुनहरा आदर्शवादी चित्र पेश करती है।
आज इसी कहानी, इसके किरदारों की अंदरूनी यात्रा और उन गहरे सवालों पर बात करेंगे जो ये सहज सी कहानियां उठाती है।
बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही इतनी इतनी ताजगी भरी है, जैसे वसंत की पहली धूप।
हाँ, मोल यानी हमारा छुछुंदर दोस्त अपने अंधेरे जमीन की नीचे वाले घर की सफाई करते करते अचानक दुनिया से ऊब जाता है। एक पल का आवेग और वो सब छोड़कर ऊपर चला आता है, नदी किनारे की धूप, हवा, आवाजें। ये उसके लिए एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खुलने जैसा है।
सही।
और वहीं उसकी मुलाकात होती है वाटर रैट यानी राटी से।
अच्छा।
राटी उसे वो सिखाता है जो इस किताब का आप कह सकते हैं मूल मंत्र बन गया है, नाव में यूं ही मटर गश्ती करना, मेसिंग अबाउट इन बोट्स।
हाँ, वो मशहूर लाइन।
हाँ, ये मुलाकात सिर्फ दो किरदारों का मिलना नहीं, ये मोल के लिए एक नई जिंदगी की, दोस्ती और रोमांच की शुरुआत है।
हाँ, और यही उपन्यास का पहला दिलचस्प पहलू सामने आता है, है ना?
बिल्कुल।
घर की जानी पहचानी सुरक्षा, वो अंधेरा घर जहाँ मोल अब तक रहता आया था, और बाहर की अनजान रोमांचक दुनिया का खिंचाव। पूरी कहानी इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमती है। कोई पारंपरिक विलन या खलनायक नहीं है।
सही कहा।
असली संघर्ष तो किरदारों के भीतर और उनके आपसी रिश्तों में है। एक तरफ मिस्टर टोड का वो बेलगाम उत्साह है, खासकर मोटर गाड़ियों को लेकर उनका जुनून।
हाँ।
जिसे संभालना दोस्तों के लिए चुनौती बन जाता है।
बिल्कुल।
दूसरी तरफ मोल का खुद को खोजना, रैटी की शांत जिंदगी में लहर उठना, और इन चारों दोस्तों का मिलकर दोस्ती और जिम्मेदारी के नाजुक धागों को थामे रखना। ये चारों किरदार भी कितने अलग हैं, फिर भी एक दूसरे के पूरक जैसे। मोल जो थोड़ा शर्मीला है, उत्सुक है, नई दुनिया देख रहा है पर घर की याद भी सताती है। रैटी जो कवि हृदय है, नदी किनारे की जिंदगी में मस्त, एक आदर्श मेजबान।
अरे हाँ, टोड।
और फिर है गंभीर समझदार बैजर यानी बिज्जू, जो एकांत पसंद करते हैं पर दोस्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। इन चारों की दोस्ती ही कहानी की जान है।
सही कहा।
आपको क्या लगता है, इन चारों में से किसकी यात्रा सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है?
वैसे तो सभी की यात्राएं अपने आप में खास हैं, पर मोल का सफर शायद सबसे ज्यादा बदलाव वाला है।
अच्छा।
वो रैटी की उंगली पकड़कर नदी किनारे के तौर तरीके सीखता है। शुरुआत में तो वो रैटी पर कितना निर्भर रहता है।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन फिर आता है वाइल्डवुड यानी जंगली जंगल का वो डरावना अनुभव, जहां वो खो जाता है। उस डर का सामना करके उसमें एक हिम्मत जागती है, और वो अध्याय डल से डोमम यानी प्यारा घर, वो तो कमाल का है।
हाँ, वो बहुत ही मार्मिक है।
बर्फीली रात में घर लौटते हुए अचानक मोल को अपने पुराने छोड़े हुए घर की महक आती है और वो फूट फूट कर रो पड़ता है। रेटी का वहां रुकना, उसे समझना, उसके उस छोटे से घर को फिर से आरामदायक बनाना, ये सिर्फ सहानुभूति नहीं, ये दोस्ती की गहराई दिखाता है।
सही।
वहां से मोल सिर्फ रेटी का साथी नहीं रहता, वो खुद भी एक समझने वाला बहादुर दोस्त बन जाता है। अपनी जड़ों को याद रखना और नए रास्ते पर चलना, ये संतुलन वो सीखता है।
सही कहा, मोल बदलता है लेकिन रेटी स्थिरता का प्रतीक है। वो नदी किनारे की आत्मा है।
हाँ बिल्कुल।
नाव चलाना, पिकनिक, कविता लिखना, दोस्तों से गपशप, उसकी खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में है। उसकी जिंदगी का मकसद जैसे इस खूबसूरत दुनिया और अपनी दोस्ती को बचाए रखना है। लेकिन हाँ, उसकी भी परीक्षा होती है, वो वेफेरर्स ऑल अध्याय में।
हाँ हाँ।
जब एक समुद्री चूहा उसे दूर देशों की कहानियां सुनाता है तो रेटी के अंदर भी भटकने की एक तीव्र इच्छा जाग उठती है।
सही।
वो लगभग निकल ही पड़ता है उस अनजान सफर पर, लेकिन तब मोल उसे रोकता है, उसे याद दिलाता है कि उसका घर, उसके दोस्त यहीं हैं। ये एक बड़ा मार्मिक क्षण है। क्या सच्ची खुशी कहीं और भाग जाने में है, या जहां हम हैं उसी पल को पूरी तरह जीने में? और इस चौकड़ी को स्थिरता देने वाले हैं मिस्टर बैजर।
हाँ, बैजर।
सबसे अनुभवी, सबसे समझदार, रहते एकांत में है, वाइल्डवुड के बीचों बीच, जैसे कोई कोई प्राचीन ऋषि।
बिल्कुल।
पर दोस्तों पे आंच आए तो सबसे पहले वही खड़े मिलते हैं। वो परंपरा, समझदारी और प्रकृति की ताकत का प्रतीक है। जब टोड की हरकतें हद से गुजर जाती हैं, या जब टोड हॉल पर मुसीबत आती है, तो सब बैजर की तरफ ही देखते।
हाँ, वही संभालते मामला।
वो बदलते नहीं, वो दूसरों को बदलने में, सही रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। एक पिता तुल्य साया। उनकी मौजूदगी ही एक भरोसा देती है कि चाहे जितनी उथल पुथल हो, अंत में सब ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल।
ऐसे स्थिर किरदारों का होना जरूरी होता है ना, जब कहानी बदलाव और चुनौतियों से गुजर रही हो।
बिल्कुल। बैजर वो लंगर हैं जो नाव को भटकने से रोकते हैं, और नाव को भटकाने वाले सबसे बड़े माहिर तो मिस्टर टोड हैं।
हाँ, टोड।
टोड हॉल के अमीर, थोड़े बिगड़ैल मालिक, घमंदी, शेखीबाज और हर नई चीज के पीछे पागल।
हाँ, पहले घोड़ा गाड़ी।
हाँ, पहले घोड़ा गाड़ी, फिर मोटर कार। सच पूछे तो कहानी का ज्यादातर एक्शन और हास्य उन्हीं की वजह से है।
सही।
उनका सफर तो किसी नाटक जैसा है। अहंकार की ऊंची उड़ान, फिर जमीन पर गिरना और अंत में खुद को पाना। मोटर कार का जुनून उन पर ऐसा चढ़ता है कि वो कानून तोड़ते हैं, जेल पहुंच जाते हैं।
हाँ।
और उनकी गैर मौजूदगी में उनके प्यारे घर टोड हॉल पर वाइल्डवुड के जंगली जानवर नेवले और उदबिलाव कब्जा कर लेते हैं। ये उनके अहंकार का नतीजा है।
वो कहानी तो बहुत ही नाटकीय है।
टोड की जेल से भागने की कहानी तो अपने आप में एक किस्सा है।
हाँ, धोबिन के भेष में।
हाँ, जेलर की बेटी की मदद से धोबिन का भेष धरकर भागना। फिर वापसी का सफर जो अपमान और मुसीबतों से भरा है। कभी नहर में गिरना, कभी ट्रेन का इंजन चुरा लेना।
हर कदम पर मुसीबत।
हाँ, हर कदम पर उन्हें ठोकर लगती है, और शायद इन्हीं ठोकरों से धीरे धीरे उनकी अपल ठिकाने आती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि उनका घर अब उनका नहीं रहा, वो पल उनके लिए सबसे बड़ा सबक होता है।
सही।
पहली बार उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले कुछ नहीं, उन्हें अपने दोस्तों की जरूरत है। यही एहसास उनमें विनम्रता लाता है।
हाँ, आखिरकार
अंत में जब वो दोस्तों की मदद से अपना घर वापस पाते हैं, तो वो पुराने वाले टोड नहीं रहते, उनमें एक ठहराव, एक शराफत आ जाती है।
तो अगर कहानी के पूरे सफर को देखें, पहले हिस्से में मोल की नई दुनिया की खोज और टोड के जुनून की शुरुआत है।
हाँ।
फिर बीच का हिस्सा थोड़ा रहस्यमयी और आत्मचिंतन वाला है, मोल का अपने घर को याद करना,
डल से डोम,
या रेटी और मोल का वो अद्भुत अनुभव जब वो खोए हुए उदबिलाव के बच्चे को ढूंढते हुए पैन देवता की झलक पाते हैं, द पाइपर एट द गेट्स ऑफ डॉन।
हाँ, वो अध्याय तो बिल्कुल अलग है।
ये अध्याय कहानी को एक अलग, लगभग आध्यात्मिक गहराई देते हैं, है ना? जैसे प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे और नदी नहीं, उसमें कुछ और भी छुपा है।
हाँ, वो अध्याय जैसे कहानी के शोर शराबे के बीच एक शांत पवित्र कोना है। वो पाठक को भी एक पल रोककर प्रकृति के जादू को महसूस करने का मौका देते हैं।
सही।
और फिर कहानी वापस टोड की तरफ मुड़ती है, उसका पतन, जेल जाना, और फिर दोस्तों की वफादारी के सहारे उसका लौटना, घर वापसी और अपनी गलतियों से सीखना।
ये उतार चढ़ाव।
हाँ, ये उतार चढ़ाव टोड के हास्य और रोमांच भरे अध्यायों और मोल रेटी के शांत भावनात्मक अध्यायों के बीच का संतुलन, यही तो इस उपन्यास को इतना खास बनाता है। एक लय है, एक ताल है इसकी बनावट में।
और इन सबके बीच जो सबसे मजबूत धागा है वो है दोस्ती का।
बिल्कुल,
दोस्ती और वफादारी की पवित्रता ये शायद सबसे बड़ा विषय है। टोड़ इतनी गलतियां करता है, इतना परेशान करता है, पर उसके दोस्त उसका साथ कभी नहीं छोड़ते,
कभी नहीं,
हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। ये बिना शर्त वाली दोस्ती आज की दुनिया में और भी ज्यादा मायने रखती है।
सही कहा।
दूसरा बड़ा मुद्दा वही घर बनाम रोमांच का है।
हाँ।
क्या घर सिर्फ चार दीवारें हैं या वो एहसास है जो दोस्तों के साथ अपनी जगह पर मिलता है? मोल बाहर निकलता है, रैटी बाहर जाने का सपना देखता है, पर अंत में सब घर लौटते हैं। घर यहाँ सिर्फ इमारत नहीं, एक समुदाय है, मन की शांति है, और इसी से जुड़ा है देहाती आदर्शवाद और आधुनिकता पर टिप्पणी।
बिल्कुल।
ग्राहम जिस तरह नदी, जंगल, शांत जीवन का वर्णन करते हैं, उसमें एक नोस्टाल्जिया है, एक चाहत है उस सरल जीवन के लिए जो शायद उनके समय में भी पीछे छूट रहा था।
हाँ, वो मोटर कार वाला हिस्सा।
हाँ, मोटर कार यहाँ सिर्फ टोड का जुनून नहीं, वो उस बदलती दुनिया, उस रफ्तार का प्रतीक है जो पुरानी शांति को भंग कर रही है।
सही।
और टोड की कहानी से विकास, विनम्रता और मुक्ति का सबक मिलता है।
कैसे इंसान अपने अहंकार से ऊपर उठकर बेहतर बन सकता है? सच्ची तरक्की शायद बाहरी चीजों में नहीं, अपने अंदर बदलाव लाने में है।
बिल्कुल।
और हाँ, प्रकृति की रहस्यमयी शक्ति भी एक अहम पहलू है।
वो पैन देवता वाला अध्याय दिखाता है कि प्रकृति सिर्फ सुंदर नजारा नहीं, उसमें गहरा अनकहा जादू भी है।
सही।
ग्रेहम हमें प्रकृति को सिर्फ देखने नहीं, उसे महसूस करने, उसका सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं।
लिखने का अंदाज भी लाजवाब है। वो तृतीय पुरुष सर्वज्ञ कथावाचक जो सबके मन की बात जानता है, बड़े प्यार और समझदारी से कहानी सुनाता है।
हाँ, बहुत गर्मजोशी से।
और जानवरों को इंसानी भावनाओं और समाज देना, यानी मानवारूपीकरण, इतनी खूबसूरती से किया गया है कि वो जानवर भी लगते हैं और हमारे जैसे भी।
हाँ, उनका गुस्सा, उनकी खुशी, उनकी चिंता, सब हमें अपनी सी लगती है।
बिल्कुल।
और भाषा जैसे शब्दों से चित्र बनाए गए हों।
हाँ, वो तो है। बिंब विधान और गीतात्मक गद्य का ऐसा मेल है कि पढ़ते हुए लगता है हम खुद उसी नदी किनारे पहुंच गए हैं। हवा की सरसराहट, पानी की आवाज, टोड़ हॉल की शांत, सब आंखों के सामने आ जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है।
और इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है?
एक अजीब सा सुकून, एक आराम मिलता है इसे पढ़कर, जैसे किसी बहुत अपने महफूज घर लौट आए हों।
हाँ, ये बात सही है।
ये दुनिया भले ही काल्पनिक हो, पर यहाँ की दोस्ती, वफादारी, प्रकृति का प्यार, ये सब सच लगता है और दिल को छू जाता है।
स्थायी छाप क्या रहती है?
स्थायी छाप यही है कि जीवन की असली खुशियाँ शायद बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी बातों में छुपी हैं। दोस्तों के साथ बैठकर खाना, नदी में नाव चलाना, आग के पास बैठकर बातें करना, ये पल अनमोल हैं।
सही।
ये किताब हमें रुककर अपने आसपास की सुंदरता को, रिश्तों की गर्माहट को महसूस करना सिखाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
हाँ, ये संतोष का पाठ पढ़ाती है।
बिल्कुल।
कुछ पंक्तियां तो हमेशा याद रह जाती हैं, जैसे रैट्टी का मोल से कहना, बिलीव मी माई यंग फ्रेंड, देर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, हाफ सो मच वर्थ डूइंग एज सिंपली मेसिंग अबाउट इन बोट्स।
हाँ, मेरा विश्वास करो मेरे युवा मित्र, नावों में यूं ही घूमने फिरने से ज्यादा करने लायक दुनिया में और कुछ भी नहीं है।
क्या ये सिर्फ आलस का गुणगान है या जिंदगी को धीमी गति से पूरी तरह जीने का दर्शन?
मुझे लगता है ये दूसरा वाला है। ये उस पल में मौजूद रहने, बिना किसी बड़े लक्ष्य के, बस उस क्षण का आनंद लेने की बात है।
हाँ,
जो आज हम माइंडफुलनेस कहते हैं, शायद रैट्टी वही जी रहा था।
सही बात है।
इसकी ठीक उलट है टोड़ का अपना गाना, द क्लेवर मैन एट ऑक्सफोर्ड, नो वन हाफ एज मच एज इंटेलिजेंट मिस्टर टोड़।
हाँ, ऑक्सफोर्ड के चतुर लोग बुद्धिमान मिस्टर टोड से आधा भी नहीं जानते।
ये उसका अहंकार है जो उसे ले डूबता है। ये दिखाता है कि खुद को सबसे ऊपर समझना कितना कितना खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल। और फिर वो रहस्यमयी पंक्ति पाइपर एट द गेट्स ऑफ डॉन से रैटी का कहना,
हाँ,
दिस इज द प्लेस ऑफ माई सॉन्ग ड्रीम, हियर इन दिस होली प्लेस श्योरली वी शैल फाइंड हिम। ये प्रकृति के उस अनदेखे आध्यात्मिक पहलू की तरफ इशारा करता है जो शब्दों से परे है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
सही।
तो 100 साल से ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है?
शायद इसलिए कि दोस्ती, घर की तलाश, प्रकृति से जुड़ाव और अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दौलत रिश्तों में है और असली सुकून बाहरी दुनिया की भागदौड़ में नहीं, अपने अंदर और अपने आसपास की सादगी में है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।